हरे कृष्णा। तो आज के इस 15 सितंबर के अमावस्या के दिन आप सबका स्वागत है तपोवन भूमि पर। ये स्थान का नाम है तपोवन, जहां पर हम लोग गए थे उसका नाम था लक्ष्मण मंदिर। तो इसका तपोवन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या किया था, और प्राचीन काल से बहुत ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पर तपस्या किया था। और आपके सामने गोदावरी यहाँ बह रही है बहुत सुंदर तरीके से, और इसी स्थान पर जैसे ये गोदावरी यहाँ से आगे बढ़ती है, जब वहाँ पहुँचती है ब्रिज के नीचे से आगे जाती है, तो वहाँ से एक नदी आ रही है जो आपको हम दर्शन कराएंगे, उसका नाम है कपिला नदी। और आगे वहाँ पर गोदावरी कपिला का संगम है, उस जगह का नाम अग्नि तीर्थ भी है, वहाँ पर एक त्रिदेव कुंड भी है। तो कपिला नदी का कथा इस प्रकार से है कि भगवान कपिल देव ने जन्म लिया देवाहुति और कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में। कर्दम मुनि बहुत बड़े संत थे, ऋषि थे, और कर्दम मुनि प्रजापति भी थे, और देवाहुति स्वयं भुव मनु की लड़की थी, और स्वयं भुव मनु पृथ्वी के राज्य करता है। 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक जीवन में 14 मनु होते हैं, और उनके कालांतर को मनवंतर कहते हैं। 71 दिव्य युग से एक मनवंतर बनता है, और एक दिव्य युग जो है वो 43,20,000 साल से बनता है। ऐसे 71 बार होता है तो कितने साल होते हैं, घर में जाके गिनना, अभी मत गिनना 73 लाख 20,000 ईयर्स, इतना समय एक मनु का होता है। चाक्षुषा मनु, सुरुचिषा मनु, स्वयंभुव मनु, ऐसे कई मनु होते हैं, और 14 मनु के कालावधि के बाद में एक ब्रह्मा जी का जीवन काल समाप्त होता है। तो स्वयंभू मनु जैसे महान राज ऋषि की वो कन्या थी देवाहुति। ऐसे कहते हैं कि जब वो अपने महल के छत पर खेला करती थी तो उसके सौंदर्य को देखने के लिए स्वर्ग से देवता अपने विमान से आते थे, और कई देवताएं उसके सौंदर्य को देखकर विमान से गिरते थे बेहोश होकर। ऐसे उसका सौंदर्य का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। तो ऐसी देवाहुति, इतनी सुंदर राजकन्या, ऐसा होने पर भी स्वयंभू मनु उसका विवाह जंगल में रहने वाले एक फकीर के साथ में कर देते। उसका नाम है कर्दम मुनि, क्योंकि इतने बड़े धनी प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा होने पर भी मनु जानते थे कि मेरा कर्तव्य है मेरी पुत्री को भगवत धाम पहुंचाना इस जीवन के अंत में, और उसके लिए एक योग्य पति चुनना बहुत जरूरी है। केवल धनी राजा प्रसिद्ध शक्तिशाली होने पर भगवत धाम पहुंचेगा इसका कोई गारंटी नहीं। उन्होंने कर्दम मुनि के अंदर देखा कि वो व्यक्ति मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बाद में अपने संग से उसके जीवन के अंत में उसको भगवत धाम पहुंचा सकता है। इसीलिए इतना बड़ा राजा होने पर भी, और देवाहुति जिसके कभी नंगे पैर जमीन पर रखे नहीं थे, ऐसी कन्या होने पर भी मनु ने अपने कन्या का विवाह कर्दम मुनि से किया। उनका घर कहाँ था, बॉम्बे के सबसे डेंस लोकेलिटी में, डाउन साउथ, नरीमन पॉइंट पे नहीं था, जंगल के अंदर झोपड़ी थी उनकी, यहाँ पर वो दिन रात तपस्या क्या करते थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको क्या कहते हैं ना, जैसे वधु पिता आकर मांग करता है ना, क्या मांगनी घालता ना, मांगनी, वैसे प्रपोज किया उनको, उन्होंने स्वीकार हुआ उनका प्रपोजल, और उनका विवाह किया गया। विवाह के बाद में देवाहुति ने अपना सारा ऐश्वर्य को भूलकर अपने पति के स्थिति के साथ में अपने आप को जोड़ दिया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में पंच पकवान मिला करते थे, मेरे पिता के घर में एसी था, मेरे पिता के घर में गाड़ी थी, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इतना ऐश्वर्य में बड़ी हुई थी, आपके पास कोई सुविधा नहीं है। उसने अपने सारे इतिहास को पीछे रख दिया और तुरंत ही अपने पति के जो रहन सहन थी उसके साथ में अपने आप को तुरंत जोड़ दिया, तुरंत एक रूप कर दिया, कभी कंप्लेंट नहीं किया। और पति उसके दिन रात कई साल तक तपस्या में लीन रहते थे, इतने मग्न रहा करते थे कि उनको होश भी रहता नहीं था कि वो कहाँ बैठे हैं क्या है। फिर भी ऐसी अवस्था में देवाहुति जैसे सुंदर राजकन्या ने उनकी पत्नी होकर अनेक वर्ष तक उनकी सेवा की, इतनी सेवा की कि खाने के लिए कंदमूल, पंच पकवान खाने वाली कन्या को कंदमूल खाने पड़े, रॉ फूड। वो बहुत कृश हो गई, दुबली हो गई, उसका सौंदर्य कम हो गया, वो बड़ी दुर्बल हो गई, लेकिन फिर भी पति की सेवा करने की वजह से, पतिव्रत धर्म की वजह से उसका तेज बहुत बढ़ गया। और बहुत बहुत साल तपस्या करने के बाद में कर्दम मुनि ने उनके साथ संग किया और उनको नौ कन्या का प्राप्ति हुई, और नौ कन्या के प्राप्ति के बाद में दसवें संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान उनके गर्भ में कपिल देव के रूप में उन्होंने जन्म लिया। जब योग्य पति होता है धर्मपरायण, और अब योग्य पत्नी होती है पतिव्रता पत्नी होती है, तो श्रेष्ठ संतान उस गर्भ में आकर्षित हो जाती है। गर्भ धारणा के समय पति और पत्नी की क्या चेतना होती है, उसके अनुसार ही, उसके अनुकूल ही, वैसे ही आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है। ये हम सब गृहस्थों को जानना जरूरी है। जो गुंडे होते हैं उनके गर्भ में गुंडे ही जन्म लेते हैं, क्योंकि जब गर्भधारणा के समय जो उनकी मनोवृत्ति होती है पापी मनोवृत्ति, वो पापी मनोवृत्ति ऐसे पापी आत्मा को आकर्षित करती है। इसलिए हमारे संस्था में जब पति पत्नी विवाह करते हैं वर वधु और उनको संतान प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो 50 माला जप करते हैं, उसको कम से कम 8-9 घंटा लगते हैं। उस दिन व्रत रखते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, मंदिर जाकर भगवान को प्रार्थना करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और सात्विक भक्तिपूर्ण भावना में जब संबंध करते हैं तो भगवान के पास से, भगवान की कृपा से भक्ति के लिए अनुकूल ऐसा जीव गर्भ में प्रवेश करता है। इसको कहते हैं गर्भधारणा संस्कार। तो मनुष्य जीवन में 55 संस्कार बताए गए हैं। ये पहला संस्कार है गर्भधारणा संस्कार, जो गर्भ हो मतलब प्रेगनेंसी होने के पहले संस्कार होता है, उससे क्षत्रिय को क्षत्रिय संतान उत्पन्न होती है। इसलिए पांडवों के गर्भ में अभिमन्यु, श्रुतकीर्ति, श्रुतिस्वयं जैसे श्रेष्ठ क्षत्रिय जन्म प्राप्त किए। अभिमन्यु के गर्भ में मतलब पत्नी के गर्भ में परीक्षित जी का जन्म हुआ, उसके बाद जन्मेजय का जन्म हुआ। ऐसे कभी हुआ नहीं कि राजा का पेट में बच्चा आया और फिर बोला कि मुझे अभी बिजनेस करना है, मुझे खेती करनी है, ऐसा कभी हुआ नहीं। क्योंकि गर्भाधान संस्कार से उस कुल की चेतना के अनुसार ही गर्भ जो है वो गर्भाशय में स्थापित होता है। तो इस तरह से इनकी चेतना इतनी दिव्य थी कि स्वयं भगवान उनके गर्भ में आए, ये उनकी महानता है। उनकी महानता यहाँ स्पष्ट होती है कि वो कोई सर्वसाधारण सामान्य जीव नहीं थे, बड़े त्यागी जीव थे। इतने ज्ञानी ऐश्वर्य संपन्न होने पर निरीच्च होकर, विरक्त होकर वो जंगल में रहते थे। और जब कर्दम मुनि का अपने पत्नी के साथ में संग करने का समय आया तो उन्होंने झोपड़ी में पत्नी के साथ संग नहीं किया, अपने योग बल से उन्होंने आकाश में एक शहर निर्माण किया। ही क्रिएटेड अ सिटी इन द स्काई। उस शहर में कई नदियां थी, कई उपवन थे, कई बगीचा थे, कई महल थे, हजारों दासियां थी उसके अंदर, सब जगह ऐश्वर्य था। ऐसे सुंदर शहर में जो उन्होंने अपने योग बल से निर्माण किया, उसमें उन्होंने अपने पति के साथ संग किया। और पहले नौ कन्याएं थी अपनी, एक संबंध से नौ कन्याओं का जन्म हुआ। ये होता है योगिक बल। और उसके बाद फिर स्वयं भगवान अवतरित हुए, और भगवान जब अवतरित हुए तो उन्होंने बड़े होकर, बड़ा होने के बाद में अपनी माता को सांख्य योग सिखाया। सांख्य योग तो बड़ा विषय है, वो श्रीमद् भागवत में उसका विस्तार में वर्णन है। जीव और भगवान, इसकी व्याख्या, और जीव और भगवान के बीच में क्या क्या शक्तियां हैं, शरीर कौन से तत्वों से बना हुआ है, और सब ये पूरा जो डिटेल ज्ञान है उसको कहते हैं एनालिटिकल साइंस, मतलब विवेचनात्मक ज्ञान कहते हैं उसको, सांख्य योग। वो उन्होंने अपनी माता को सिखाया। उस समय माता अपने बेटे की शिष्य बनी और पुत्र अपनी माता के गुरु बने। और यहाँ से कुछ 28-30 किलोमीटर अंतर पर एक स्थान है, उसका नाम है कपिल धारा। उस जगह पर कपिल मुनि ने, मतलब भगवान ने, अपनी माता को सांख्य योग का बोध दिया था। उसी जगह पर एक और लीला भी हुई है, बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो जब ये सांख्य योग अपनी पुत्र के मुख से देवाहुति ने सुना तो वो एकदम परिपूर्ण हो गई, उनकी सारी जो कमियां थी वो नष्ट हो गई और वो आध्यात्मिक स्तर पर एक परिपूर्ण अवस्था में प्राप्त हो गई। शी बिकेम परफेक्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ। और उस समय देवाहुति का रूपांतर एक नदी में हुआ, मोक्ष के रूप में वो नदी बन गई और वो कपिला नदी के नाम ने वहां से प्रकट हो गई। इसलिए उस जगह का नाम क्या है, कपिल धारा, क्योंकि वो धारा प्रवाहित हो गई। और वो कपिला नदी जो है वो कपिल धारा के जगह पर प्रकट होती है और बहते 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 यहां पर आती है, जैसे मेरा हाथ जा रहा है इस दिशा में आती है, वहां से इस दिशा में आती है और गोदावरी से उनका यहां मिलन होता है और वहां से आगे गोदावरी बनकर वो आगे प्रवेश करती है। तो इस पवित्र क्षेत्र में प्रभु रामचंद्र ने सीता देवी को अग्निदेव को अर्पण किया है। वो कथा अभी हमारे इस प्रसंग में आएगी तो मैं आपको बताएंगे। तो हमारी सुबह की कथा कहाँ समाप्त हुई थी, प्रभु रामचंद्र अगस्त्य मुनि के आदेश से पर्णकुटी पहुंच जाते हैं, हाँ, पंचवटी क्षेत्र में आते हैं और लक्ष्मण जी सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करते हैं, कंदमूल फल फूल का निर्माण करते हैं, मतलब व्यवस्था करते हैं। और वहां पर प्रभु रामचंद्र अपनी प्रिय पत्नी के साथ में निवास आरंभ करते हैं। तो वो स्थान, जैसे मैंने कहा सुबह आपको बताया था कि पद्म क्षेत्र कहते हैं उसको, पद्मपुर सत्ययुग में, त्रिकंटक कहते हैं त्रेता युग में, और जनस्थान भी उसका नाम है। तो जनस्थान ये रावण का एक अड्डा था, वहां पर रावण के दो भाई खर और दूषण और उनका मित्र त्रिशिर अपने 14,000 सैनिकों के साथ में रहा करते थे। और उनकी बहन शूर्पणखा, जिसका वर्णन ऐसे आता है कि वो रावण जैसे ही बलशाली थी, वो वहां पर निवास करती थी। एक दिन वो घूमते घूमते वहां पर आ गई तो उसने बहुत सुंदर अनंत कामदेवों को भी लज्जित करने वाले, जिनका सौंदर्य है, ऐसे प्रभु रामचंद्र का दर्शन किया। और जैसे ही दर्शन किया उनके सुंदर शरीर का, दिव्य आभा का, प्रकाश का, तो उसके मन में काम जो क्रीड़ा है, काम भावना जागृत हो गई। तो काम भावना जागृत हो गई तो उसने का सोचा कि ये मेरे पति बनने के लिए योग्य है। वैसे जैसे क्या कह रहा था मैं, हाँ, काम भावना जागृत हो गई तो सोचा कि जैसे राक्षसी जो लोग होते हैं वो मनुष्य को तुच्छ मानते हैं, जैसे रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो देवताओं से और राक्षसों से और शस्त्र से और अस्त्र से मुझे मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और मानव की तो मैं परवाह नहीं करता, वो तो मैं नाश्ते में खाता हूँ उनको, तो उनसे न मरने का वरदान क्या फायदा है मांग के, वो वरदान मांगने के योग्य भी नहीं। ऐसे मानव जाति को राक्षस लोग तुच्छ मानते हैं, और राक्षस होने पर भी इसका मन एक मनुष्य पर आता है, क्योंकि भगवान रामचंद्र मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु रामचंद्र विष्णु भगवान ने मनुष्य होने में जन्म लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान में मनुष्य का कोई जिक्र नहीं हुआ था। तो फिर भी वो आकर्षित होती है, और वो शूर्पणखा के पास बहुत सिद्धियां थी, रूप बदलने की, सुंदर बनने की, आकाश में उड़ने की, लेकिन काम वासना के द्वारा मोहित होने की वजह से वो अपना रूप बदलना भी भूल जाती है। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन दिया है कि उसका शरीर बहुत भयंकर था, वह अपने आप को नव युवा सुंदर स्त्री मानती थी, लेकिन उसके आंखें जो है वो विष के प्याले के तमप समान थे। उनका चेहरा इतना भयंकर था कि कोई भी उसके चेहरे को देखकर भयभीत होते थे। उसकी कमर जो है वो युद्ध में बजाने वाले नगारे की तरह बड़ी थी। उसके केस लाल घास की तरह भयंकर लग रहे थे। शूर्पणखा को देखने से लगता था कि साक्षात मृत्यु को मिल रहे हम। ये सब रामायण में दिया है, वाल्मीकि मुनि ने वर्णन किया है, मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं। शूर्पणखा के पास देखना यानी साक्षात मृत्यु के साथ भेंट करने जैसा था। उसकी बात करने का ढंग ऐसा था जैसे कोई भयंकर ध्वनि करके चिल्लाते हैं ना, गर्जना करते, वैसे उसकी आवाज थी। शूर्पणखा बहुत कुरूप दिखाई देती थी। उसके मुंह से हमेशा निंदा टीका अपशब्द ही उच्चारण होते थे। और शूर्पणखा मूर्तिमंत पाप का स्वरूप थी। ऐसा भयंकर शरीर और चेहरा और बाल आंख लेकर वो राम के पास में आती है। वो कहते हैं, हे दिव्य मानव, कहाँ से आए हो, आपका परिचय क्या है, मैं आपके रूप के देख के मोहित हो गई हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हम आप विवाहित हो जाएं और इस दंडकारण्य के सुंदर वातावरण में हाथ में हाथ डालकर विहार करें, यहाँ के फल फूल का आस्वादन करें और प्रेम क्रीड़ा करें। आप कौन हो? तो वो कहते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ का मैं पुत्र हूँ, ज्येष्ठ पुत्र हूँ, और अपनी माता की इच्छा की वजह से मैं यहाँ पर वनवास में आया हूँ। ये मेरी जनक नंदिनी सीता मेरी प्रिय पत्नी है, इसके लिए मैं प्राण भी त्याग सकता हूँ। पहले से ही बोल लेते हैं कि मेरा इनका संबंध क्या है। हा? और मेरा परम प्रिय भाई लक्ष्मण सुमित्रा नंदन है, दशरथ राजा की हमारी दूसरी माता जो है सुमित्रा, उसका ये पुत्र है और हम लोग यहाँ पर वनवास में रह रहे हैं। हे सुंदरी, आप कौन हो? तो वो कहती है कि मैं श्रीलंका के राजा श्री रावण की छोटी बहन हूँ, मैं उनके समान बलशाली हूँ और मेरे और दो भाई भी हैं, एक का नाम कुंभकर्ण है, वो साल के 365 दिनों में से 364 दिन सोता है, एक ही दिन जगता है, क्योंकि जब उसका समय आया था ब्रह्मा से वरदान मांगने का तो इसको इच्छा थी कि इंद्र का आसन प्राप्त हो। तो उस समय ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सरस्वती को कहा कि इसके मुख में जाकर कुछ ऐसा कहो कि इसका वरदान नष्ट हो जाए। तो वो कहने वाले थे कि मुझे इंद्रासन चाहिए, लेकिन उसने कहा कि मुझे निद्रासन चाहिए। इंद्र का वजह से निद्रासन हो गया, स्लिप ऑफ टंग, सरस्वती देवी के प्रभाव से। उसको भी आश्चर्य हुआ कि मेरे मुंह से क्या शब्द निकला, लेकिन वो बोल चुका था कि तब तक मुझे निद्रासन चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तपस्या करके इतनी भयंकर शक्ति प्राप्त हुई थी कि वो दिन में कई जानवर कई इंसान खाता था। तो इसलिए उसको वरदान मिला कि साल के 365 में से 364 दिन आप आराम करो, क्योंकि आपके होने से पृथ्वी को बड़ा भय है, एक दिन उठोगे जो मर्जी है खा लो फिर सो जाओ। ऐसा मेरा एक भाई है जो फिलहाल श्रीलंका में सो रहा है। मेरा और एक भी भाई है, इसका नाम विभीषण है, वो हमारे वीरों की सेना में एक बकरी जैसा है, इज लाइक अ ब्लैक शिप इन अवर पावरफुल असेंबली। वो भगवान की पूजा करता है और खुद को वैष्णव मानता है, लेकिन वो हमारे अंदर एक धब्बा है। हाँ, हमारे शक्तिशाली परिवार में एक ऐसा बकरी जैसा कमजोर आदमी है वो, लेकिन फिर भी बड़ी दया से रावण ने अपने दरबार में उसको भी रखा है। और मेरे और भी भाई है, दो भाई यहाँ रहते हैं जनस्थान में, 14,000 सैनिकों के साथ में जनस्थान की रक्षा करते हैं, और मैं यहाँ पर जंगल में निस्वच्छंद विहार करती हूँ, जो चाहिए उठा के खाती हूँ, ऋषि मुनि हो मनुष्य हो प्राणी हो जो मन में आता है उसको खा लेती हूँ। अब मेरा ये विचार है कि आपके साथ विवाह करूँ और मेरे मन की कामना पूरी करूँ। प्रभु रामचंद्र कहते हैं, ऐसा है कि मैं वनवास में आया हूँ लेकिन मेरी पत्नी को लेकर आया हूँ, और मैं एक पत्नी व्रता हूँ, लेकिन मेरे जो भैया जो है ना, ये अपने पत्नी को वहाँ छोड़कर आए, ये बेचारे व्याकुल हैं अपनी पत्नी के संग के लिए, ये अकेले हैं, इज इन सेपरेशन। हो सकता है और सुंदरता में मुझसे कम नहीं है, तो आपका एप्लीकेशन जाके उनको दे दो। तो वो बहुत देखती है लक्ष्मण को, तो भी उतने सुंदर थे वो, बहुत सुंदर, बलराम जी के अवतार तेज पुंज थे वो, उनके पास जाके याचना करती है कि हे लक्ष्मण, हे कामदेव के अवतार, सुंदर पुरुष, मेरा मन आपके लिए मोहित हो गया है, कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए और हम पति पत्नी बनकर इस जंगल में डोलेंगे, आनंद करेंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा है, देखो मैं यहाँ पर प्रभु रामचंद्र की सेवक के रूप में आया हूँ, मेरा काम सेवा करना है, और अगर मेरी पत्नी बनोगी तो तुम्हारा पोजीशन नंबर टू का हो जाएगा, नंबर वन सीता, नंबर टू मैं, नंबर टू की पत्नी नंबर टू। तो आपको मेरी पत्नी बनने से नुकसान है, क्योंकि आपको दासी बनकर जीवन भर इन दोनों की सेवा करना पड़ेगी। मैं यहाँ पर आनंद लेने नहीं आया हूँ, मैं तो सोता भी नहीं हूँ, मैं दिन रात सेवा करते रहता हूँ। तो आपको लगेगा कि मेरे साथ रहकर बहुत आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, वन में विहार करने को मिलेगा। मैं 24 ऑन कॉल हूँ यहाँ पर, आई एम ऑन कॉल 24 आवर्स। हाँ, हमारे यहाँ पर नर्सें लोग, कितने लोग नर्स हैं यहाँ पर? हाँ, वसई से आए हैं। आप जानते ना ऑन कॉल क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है, सर दुखता है, नींद आती है। तो मैं 14 साल के लिए ऑन कॉल हूँ यहाँ पर, 24 आवर्स, 24/7। तो क्या लाभ है तुम्हारे लिए? तुम जाकर प्रभु रामचंद्र के लिए ही इच्छा करना, उनके पास ही विनती करना, शायद मान जाएंगे वो। तो फिर लौट के आती है रामचंद्र के पास, तो फिर उनको मजाक करते हैं, फिर उनको हंसते हैं। तब शूर्पणखा को गुस्सा आता है, क्योंकि बार बार वही कहते हैं वो कि मैं एक पत्नी व्रता हूँ, ये मेरी प्राण प्रिया है, इनके बिना मैं किसी को प्यार नहीं करता हूँ, और इनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो वो समझ जाती है कि ये जो मनुष्य की अबला कुरूप कृश दुर्बल स्त्री है, यही मेरे प्रेम के बीच में आया हुआ काटा है, तो क्यों ना पहले उसको ही खा जाऊं। जब मैं उसको खा जाऊंगी तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसलिए वो सोचती है कि इसको मैं वध कर दूं, और वो बार बार सीता के विषय में बहुत गंदे गंदे शब्द कहती है कि ये जो कीड़े जैसे दिखने वाली दुर्बल पतली सी जो कृश औरत है, इसके पीछे क्यों तुम भागते हो? मेरे पास देखो, मेरा शरीर कितना विशाल है। और वो बाद में जब सीता देवी के मारने के बारे में सोचती है और झपट पड़ती है उसकी ओर, तब भगवान रामचंद्र कहते हैं लक्ष्मण, मैं मजाक का समय खत्म हो गया है, एंटरटेनमेंट टाइम ओवर, नाउ बी सीरियस, अभी गंभीर बनना पड़ेगा और इसका इलाज तुरंत करो। तो उसके झपटने के समय उसी क्षण में लक्ष्मण इतनी तेजी से और कुशलता से तलवार निकालते हैं और उसको कुछ समझ में आने के पहले उसकी नाक और दो कान काट डालते हैं और उसको उठाकर गोदावरी के पश्चिम किनारे में फेंकते हैं। तो अचानक सीता को मारने के लिए जो गई वो इतनी भयंकर चीख पुकारती है कि पूरे दंडकारण्य में उसकी आवाज गूंजती है, इतनी भयंकर चीख, और बहुत जोर से रोते हुए, कान और नाक से खून बहते हुए जंगल में भाग जाती है वो। उस समय प्रभु रामचंद्र सोचते हैं कि अभी आगे का समय जो है वो शांतिपूर्ण नहीं होगा, हमने किसी को कष्ट दिया है, हालांकि हमने कष्ट नहीं दिया, हमने तो स्व संरक्षणार्थ उनको कष्ट दिया है, लेकिन फिर भी राक्षसी है वो, काम भावना से पीड़ित है, काम वासना की पूर्ति नहीं हुई है, उसको क्रोध तो हुआ रहेगा, फिर उसके आगे औरों को लेके आएगी और हमारा जीवन अशांत हो जाएगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि जब काम वासना पूर्ण नहीं होती है, भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तब क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो उस समय वो लक्ष्मण जी को जंगल में लकड़ी या भोजन या कंदमूल लाने के लिए भेज देते हैं और सीता देवी को लेकर प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जो भगवान की सखी है अंतरंगा शक्ति, उसको कोई छू नहीं सकता है, और अब भगवान तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, आगे क्या होने वाला उनको पता है, किस लीला करने के लिए वो आए हैं, इसलिए अपनी प्राण प्रिया अंतरंगा शक्ति सीता देवी को सुपुर्द करने के लिए वो यहाँ पर अग्निदेव के पास आते हैं। और यहाँ पर एक त्रिदेव कुंड है जहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी प्रकट हुए हैं और अग्निदेव भी प्रकट हुए हैं भूमि से, और भूमि देवी प्रकट भी हुई है, और उन सबके सामने प्रभु रामचंद्र विनती करते हैं अग्निदेव को कि मेरी पत्नी को, प्राण प्रिया पत्नी को आपके साथ में आपको रखना है। तो सबके साक्षी से प्रभु रामचंद्र यहाँ पर अपनी पत्नी को अग्निदेव को अर्पण करते हैं और अग्निदेव उनको छाया सीता को देते हैं, मतलब प्रति सीता जो उनके जैसी दिखने वाली लेकिन वो नहीं है, दूसरी आत्मा, और उसको लेकर फिर प्रभु रामचंद्र फिर कुटिया में लौट के आते हैं। और यहाँ पर शूर्पणखा का जो है चिल्लाती हुई चीखती हुई पुकारती हुई, रोती हुई, क्रोध से आग बबूला होती हुई अपने भाई के पास पहुंचती है। हे मूर्ख खर और दुष्ण, यहां पर आनंद ले रहे हो, भोग लालसा में भी लिप्त हो, देखो मेरी क्या अवस्था हो गई है। तो खर कहता है, कौन है वो, किसकी ऐसी हिम्मत है कि मेरी बहन की ऐसी दशा करें। बाकी दो तुच्छ मानव जंगल में विहार कर रहे हैं, उसमें से एक ने मेरा ऐसा हालत बना दिया है। तो खर और दूषण और उनका मित्र त्रिशीर, इसका शरीर पहाड़ जैसे था और उस पर तीन चोटियों जैसे उसका तीन सर थे उसके ऊपर, ऐसे भयंकर राक्षस जो अलग अलग माया विद्या में प्रकट निपुण थे, सब शस्त्र अस्त्रधारी थे, सबको लेकर खर दूषण जो है आक्रमण के लिए जंगल में जाते हैं। शूर्पणखा उनको दिखाने के लिए आती है, देखो ये है। तो उस समय घमासान युद्ध होता है, उसका बहुत विस्तार में वर्णन रामायण में दिया है। ऐसे कहा गया है कि राम ने लक्ष्मण को उस समय सीता को लेकर कहा कि तुम जाओ और उस गुफा में जहां पर सुबह आपने दर्शन किया ना, मतलब बाहर से वो सीता गुफा है, वहां पर वो लक्ष्मण जी को आदेश देते कि आप जाओ और सीता देवी को वहां पर रखो। तो सीता देवी वहां सुरक्षित बैठती है, राम लक्ष्मण जी पहरा देते हैं और अकेले पैदल जमीन पर खड़े हुए श्री रामचंद्र जी धनुष ताने हुए इन सबके साथ युद्ध करते हैं। और इतना भयंकर युद्ध होता है कि सारे देवता आकाश में इकट्ठा होते हैं देखने के लिए, इतना भयंकर मतलब आश्चर्यकारी युद्ध को देखने के लिए। प्रभु रामचंद्र तोणीर से कब बाण निकालते थे, कब धनुष पर चढ़ाते थे और कब उसको मारते थे, किसी को नजर नहीं आता था। इतनी गति से वो हजारों लाखों बाण चलाते थे। एक समय ऐसे आया बहुत बार युद्ध में उनके कि कई बार अंधेरा छा गया, प्रभु रामचंद्र से बाण धनुष से निकले हुए अनंत बाण जो है सारे आसमान को छा कर प्रकाश को रोक देते, अंधकार छा जाता है और पहले भगवान त्रिशूल का वध कर देते हैं, फिर दूषण का वध कर देते हैं, फिर खर जो है अपने दिव्य रत्नों से बने हुए रथ को लेकर वहां पर आता है और जोर से ठहाका मार के हंसता है और कहता है, ये जो मरे हुए हैं ना तुम्हारे हाथ से, ये तो मूर्ख राक्षस थे, इनमें कोई बल नहीं था, अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा, मौत के लिए तैयार हो जाओ हे मानवी राम, हे मनुष्य तुच्छ मनुष्य राम, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो राम भगवान कहते हैं, वीर जो होते हैं वो मुख से बात नहीं करते हैं, धनुष और बाण से बात करते हैं। ऐसे उनका बहुत सुंदर सुंदर डायलॉग होता है, बहुत सनसनीखेज ड्रामा है ये। तो बहुत घमासान युद्ध के बाद, दिव्यास्त्रों के आदान प्रदान के बाद, प्रभु रामचंद्र जो है खर का सर जो है उसके शरीर से अलग करते हैं और वहां पर ऐसे लिखा गया है कि एक घंटे के अंदर, 45 मिनट से एक घंटे के अंदर प्रभु रामचंद्र 14,000 सैनिक खर और दूषण और त्रिशिर इनका वध कर देते हैं और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में सब जगह वहां पर टूटे हुए हाथ गर्दन और सब जानवरों का शव सब जमा होता है, टूटे हुए रथ शस्त्र अस्त्र सब गिरे हुए पड़े नजर आते हैं। तो शूर्पणखा देखती है, अरे इतना भयंकर युद्ध किया उन्होंने, इतनी शक्ति है, मेरा खर जैसा वीर भाई वीर गति को प्राप्त हो गया। तो उसमें एक राक्षस था अकंपन, वो देखता है कि अरे ये मानव को साधारण मानव नहीं है, इसके धनुष से कब बाण निकलते हैं, कब छूटते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, आंख बंद होने के पहले कई हजारों बाण निकल जाते हैं। तो अकंपन जो है बुद्धिमान था, ऐसा वर्णन उसका आया है कि वो बहुत बड़ा बुद्धिमान था, बहुत शक्तिशाली था, वो तुरंत यहां से उड़ता है आकाश में अदृश्य होकर और सीधे लंका पहुंचता है और रावण को वो सचेत करना चाहता है। वो कहता है, वो जानता है रावण हमारे बहुत गर्विष्ठ हैं, बहुत अहंकारी है अपने बल के लिए बहुत, अगर उनको कहा जाए कि तुमसे ज्यादा बलवान आदमी वहां पर पैदा हुआ है और तुम्हारे भाइयों का वध किया है तो उसको अच्छा लगेगा ना, इसलिए उसको मीठी मीठी लगेगी ऐसी बातें करता है। वो कहता है कि वो जो मानव है बड़ा वीर है, उन्होंने खर दूषण का वध कर दिया है, उनके पास एक सुंदर स्त्री है, वो बहुत बलशाली है लेकिन उसकी कमजोरी है, वो जंगल में अपनी सुंदर पत्नी को भी लेकर आया हुआ है जिसका सौंदर्य किसी भी देवता की पत्नी के साथ तुलना नहीं कर सकते, सारे देवताओं के स्त्रियों का सौंदर्य उसके सामने तुच्छ है, ऐसी स्त्री को लेकर वो जंगल में आया है और उसको वश में करना है तो युद्ध करना बुद्धि की बात नहीं है, उसके पत्नी को उससे अलग किया जाए तो वियोग में वो दुर्बल हो जाएगा, भावना के स्तर पर वो डिप्रेशन में जाएगा, दुखी हो जाएगा, तब उसको साथ में युद्ध करना आसान रहेगा और परास्त करना आसान रहेगा। तो रावण जो है तुरंत उठता है और मारीच के पास पहुंचता है, कहते हैं मारीच तुम्हें हमारे प्लान में भाग देना है। तो मारीच समझाता है उनको कि आपके अंतपुर में कई रानियां हैं, आप उसमें अपना दिल लगाओ, सीता के पीछे मत जाओ, ये राम बहुत शक्तिशाली है, वो साधारण मानव नहीं है। तो रावण मान जाते हैं, चले जाते हैं। जब वापस जाते हैं तो चीखती हुई चिल्लाती हुई शूर्पणखा वहां पहुंचती है, वो नाच गाने में मशगूल रहता है, सब शराब का मदिरा का पान करते रहता है और सब नाच गाने के स्वर के बीच में भैया चीख सुनाई देती है। जैसे वो चीख सुनाई देती है सब नाचने गाने वाले भाग जाते हैं, अपना सब आसन वासन दे के और वाद्य लेकर भाग जाते हैं। तो कहते क्या हुआ, बोलते भैया तुम यहां पर भोग वाल्स भोग विलास में मग्न हो, तुमको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, एक तुच्छ मानव ने अपने भैया के आदेश के अनुसार मेरी यह भयंकर अवस्था कर दी है और तुम ये नहीं जानते तुम्हारे बलशाली भाई खर दूषण का वध किया गया है। और वो भी बहुत होशियार है, वो जानती है कि अपने भैया की वीकनेस क्या है, उनकी कमजोरी क्या है कि विश्व में ब्रह्मांड में स्वर्ग लोक में पाताल में पृथ्वी पर जहां जहां भी सुंदर स्त्री है, जहां जहां भी भोग्य वस्तु है वो मेरी होनी चाहिए, ऐसी उसकी भावना थी। ऑल दैट इज ब्यूटिफुल शुड बी माइन, आई मस्ट ओन इट। तो वो क्या करती है, इस तरह से वर्णन करती है कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, उसका सौंदर्य सभी देवताओं के स्त्रियों से श्रेष्ठ है, कामदेव की पत्नी रति भी लज्जित हो जाएगी उनके सामने, ऐसा सौंदर्य है उसका। तो मैंने सोचा कि जैसे दुनिया की हर एक सुंदर वस्तु आपके लिए होनी चाहिए वैसे सीता भी आपकी होनी चाहिए। यह विचार करके जब मैं उसके पास झपटी तो दो तुच्छ मानव से एक ने दूसरे को आदेश दिया और उसने तलवार निकालकर मेरे नाक और कान काट कर मेरा अपमान किया, रावण की बहन का अपमान किया। दिस इज कॉल्ड इंस्टिगेशन। ये शूर्पणखा को बड़ा अच्छी तरह मालूम था कि अपने भाई को कैसे उकसाया जाए। तो जब वो विस्तार के विस्तार रूप में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो रावण बोलते हैं मतलब दिस इज फॉर मी, आई मस्ट गो एंड हैव इट। तो फिर वो जब वो पूरी तरह से मनी मन में भावना के स्तर पर सीता जी के लिए आकर्षित हो जाता है तब वो अपने अपमान के बारे में बात करती है कि मैं तुम्हारी बहन हूं और मेरी अवस्था की गई है और तुम यहां पर शांत कैसे बैठ सकते हो, उनको अभी जाकर हमला करना होगा। तो दोबारा रावण जाकर मारीच को मिलता है, एक बार जाकर थोड़ा समझ जाता है लेकिन अब वो काम वासना से वश होकर क्रोधित होकर फिर मारीच के पास पहुंचता है। तो मारीच कहता है तात इतनी जल्दी आ गए, लंका में सब कुशल तो है ना, ऐसे इमरजेंसी में कैसे आ गया। वो कहते रावण और मारीच मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। मारीच हाथ जोड़कर बार बार कहता है तात आप समझ लो कि वो साधारण मानव नहीं है, वो आग का गोला है, सीता के पीछे आप मत भागना, सीता का आकर्षण आपके राक्षस कुल का नाश बन सकता है, नाश का कारण बन सकता है, इसलिए सीता का मोह छोड़ दो। मंदोदरी आदि जो हजारों रानियां आपके अंतःपुर की शोभा बढ़ा रहे हैं उन पर अपना अनुराग रखो, अपना मन लगाए रखो और सीता के पीछे मत लगो। आप जानते थे राम का बल क्या है, एक बार जब हम चित्रकूट के वन में गए थे मैं सुबाहु और ताड़का, उस समय उसने बहुत ही कम समय में इतने भयंकर सुबाहु ताड़का का वध कर दिया। फिर मैं बड़े गर्व से उनके सामने गया, मेरा शरीर जो है वो पर्वत काय समान था और मैं गर्जना करके सबको डराता था, मेरे आवाज से सब कांपते थे। वो मैं भयंकर गर्जना करते हुए राम के सामने गया तो उस राम ने मुझे एक तीर मारा और मैं 100 योजन समुद्र में जाके गिरा आकाश में उड़ते हुए। तब राम केवल 12 वर्ष के थे, भैया रावण यानी कि उसका वो भतीजा था तात रावण, तब राम केवल 12 साल के थे, अभी वो 24 साल के हो गए हैं। आप समझ सकते हैं एक बालक के रूप में उन्होंने मुझे बाण मारकर मुझ जैसे वीर पराक्रमी पर्वत काय शरीर के मारीच को सौ योजन समुद्र में फेंक दिया था, इसलिए उसके बल से आप डरो और सीता का मोह छोड़ दो। लेकिन जब काम वासना से मन लिप्त होता है तो कोई बुद्धि की सलाह की बातें दिमाग में बैठती नहीं है, इसलिए हमको काम वासना से बचना चाहिए। काम वासना से लिप्त होने पर बड़े बड़े श्रेष्ठ बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, काम नहीं करती। तो रावण आखिर में कहता है, अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो यही मैं आपका वध कर दूंगा, इसलिए चुपचाप जैसे मैं कहता हूं वैसे करो, आप एक मायावी हिरण बन जाओ, सीता जी के आश्रम के पास में जाकर डोलो, उसका मन आकर्षित करो। फिर सीता जो है उस हिरण को देखकर आकर्षित हो जाएगी, पति से कहेगी मुझे वो हिरण चाहिए, तब उसके पति निकलेंगे, फिर उसको दूर 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 जंगल में ले जाना। तो जब तुम्हारा वध होगा तब मेरी ऐसी आवाज में चिल्लाना जैसे कि राम की आवाज हो, जोर से पुकारना। तो ये पुकार सुन के लक्ष्मण जो उसका भाई है वो भी मेरे लिए मतलब अपनी भाई की रक्षा करने के लिए निकल जाएगा, तब जाकर मैं सीता का हरण कर लूंगा। उसको बड़ी खुशी होती है, आपने इतना बढ़िया प्लानिंग बना के रखा है। लेकिन वो जानता नहीं कि उसका प्लानिंग जो है वो ये क्या कहते हैं उसको, डरपोक आदमी का प्लानिंग है, छल कपट करके वो एक स्त्री का हरण करना चाहता है, सामने से युद्ध करके नहीं लेकिन छल कपट करके। तो महाराज सोचता है कि राजा के हाथ से मृत्यु होने से नरक की प्राप्ति होगी, शत्रु के हाथ से मृत्यु होने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और ये तो प्रभु रामचंद्र है, इनके हाथ से वध होने से वैकुंठ की प्राप्ति होगी, इसलिए आपकी योजना मुझे मंजूर है। और रावण अपने पुष्पक विमान पर बिठाकर दंडकारण्य में मारीच राक्षस को लेके आता है। मारीच अपनी इच्छा के बगैर आता है, लेकिन वो जानता है कि इस तरह से या उस तरह से दोनों तरह से मृत्यु निश्चित है। रावण कहते हैं कि राजा जब कुछ कहता है वही उसकी आज्ञा होती है, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो और मेरी इच्छा को पूर्ति करो। फिर हिरण बनता है मारीच, इस प्रकार का हिरण बनता है कि उसके शरीर का आगे का हिस्सा सोने का होता है, पीछे का हिस्सा चांदी का होता है, उसके सिंह जो है वो रत्नों से होते हैं, उसके बीच में बहुत सुंदर सुंदर मणि होते हैं, चमकदार रत्न होते हैं उसके ऊपर, उसका प्रकाश सब जगह फैला होता है, और बड़ी ही मोहक तरीके से वो हिरण जो है वो सीता के आंगन में यहाँ वहाँ डोलता है और बार बार बड़ी बड़ी मीठी मीठी नज़रों से सीता को देखता है। सीता अपने प्रिय फूल बिनने के लिए वहाँ पर गई होती है और देखती है अचानक वहाँ पर एक सुंदर हिरण पैदा हो गया है और वो बार बार नजरों से उसको बुला रहा है। तो सीता देवी भाग भाग के आश्रम में आती है, हे नाथ हे स्वामी, देखा आपने एक बहुत अद्भुत चीज आप हमारे जंगल में उत्पन्न हो गई है, वो हिरण जो है देखिए देखिए उसकी त्वचा है, उसकी जो चर्म है वो आगे सोने का है पीछे चांदी का है, उसके सिंह जो है वो मोतियों के बने हुए रत्नों से बने हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं इस हिरण को अपने पास रखूंगी एक पालतू प्राणी की तरह, और वनवास का 21 साल बाकी है तो इस हिरण को लेकर मैं महल में जाऊंगी और हमारी माताओं को दिखाऊंगी, उर्मिला को दिखाऊंगी, शत्रुघ्न भरत की पत्नियों को दिखाऊंगी और सबके लिए बड़ा खिलौना होगा। तो तात स्वामी, मुझे इस हिरण की बहुत इच्छा है, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, क्या आप कृपा करके मुझे हिरण को दे सकते हो? तो लक्ष्मण जी वहां पर पैरे में खड़े हैं, वो कहते हैं कि देखो भाभी जी, इस हिरण की मुंह में आप मत पड़ो, क्योंकि ये हिरण नहीं है, जो ब्रह्मा ने 84 लाख यक्ष योनि का निर्माण किया है उसमें यो योनि नहीं आती है, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसके आगे का चर्म सोने का पीछे में चांदी का और सिंह रत्नों के बना हुआ कोई योनि भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम से नहीं बनाया है। तो ब्रह्मा जी के 84 लाख योनि के यादि में लिस्ट में कहीं भी ये जीव नहीं आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जीव सच्चा नहीं है, ये मारीच राक्षस है, ये सब माया जाल है, हम लोगों को फंसाने के लिए ये बनाया गया है, इसलिए भाभी जी इसके मुंह में आप मत पड़ो। तो सीता देवी फिर भी बोलती, नहीं नहीं जैसे भी हो मेरा मन तो इस हिरण पर कांचन मृग पर आ गया है, प्रभु मेरी आप इतनी इच्छा पूरी नहीं करोगी, मैं आपके साथ जंगल में विहार कर रही हूँ, थोड़ा मुझे सुख मिलेगा आनंद मिलेगा, इस हिरण के साथ में मैंने दिन बहुत अच्छी तरह से बिताऊंगी। तो प्रभु कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अगर ये राक्षस भी है तो मैं उसका वध कर दूंगा, अगर नहीं है तो मैं इसको लेके आऊंगा सीता के लिए। इस तरह से वो धनुष बाण लेकर निकलते हैं और कहते हैं लक्ष्मण आपको सीता की रक्षा करनी है, किसी भी कीमत पर किसी भी हालत पर सीता को अकेले नहीं छोड़ना है, जब तक मैं लौट के आऊंगा तब तक आपको यहां पर सीता की रक्षा करनी है। तो प्रभु रामचंद्र निकल जाते हैं। उनको क्या काम था, इस हिरण को जिंदा पकड़ना था, मारकर पकड़ना नहीं था, क्योंकि सीता देवी ने कहा था कि हमको इसके साथ खेलना है, तो शी वॉन्टेड हिम अलाइव। लेकिन ये हिरण जो है हवा की गति से भागता है और दूर दूर गहने जंगल में राम जी को लेके जाता है। बहुत देर तक घने जंगल में यात्रा करने के बाद में राम जी को समय पता चलता है कि राक्षसी है, तो अपना एक बाण निकालते हैं और उसके हृदय में मार देते हैं। जैसे ही भगवान राम उनको बाण मारते हैं तो उसका शरीर जो है वो कई मील आकाश में उड़ता है और आकाश में ही उसका रूपांतर होता है, शरीर का रूपांतर होकर भयंकर पर्वत समान राक्षस का शरीर निर्माण होता है और वो धड़ाड़ करके पृथ्वी पर गिर जाता है और छाती पर बाण लगे अवस्था में मरीच राक्षस पुकारता है, हे लक्ष्मण, हे सीते, मुझे बचाओ। और यह आवाज पूरे जंगल की आवाज ध्वनि को चीरती हुई सीता की कुटी पर आती है, पर्ण कुटी पे। सीता देवी भयभीत हो जाती है, लक्ष्मण तुमने सुना, मेरे प्रभु रामचंद्र सहायता के लिए पुकार रहे हैं। वो कंपित हो जाती है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, वो चिल्लाने लगती है, लक्ष्मण अभी चले जाओ। लक्ष्मण शांत खड़े होते हैं, भाभी मेरे भैया राम को कोई नहीं मार सकता, मैंने आपको कहा था ना कि वो राक्षस था, उसका ही वध हो गया है और उसी ने छल कपट से मेरे भैया की आवाज में मुझे यहां से भगाने के लिए ये काम किया है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, कोई चिंता करने की बात नहीं है। एकदम तत्प्रज्ञ होकर शांत होकर धनुष लेकर खड़े हैं और रक्षा के लिए वहां पर खड़े। सीता कहते लक्ष्मण मैं समझती हूं कि मेरे प्रभु संकट में हैं, नहीं तो ऐसे नहीं पुकारते, जाओ जल्दी यहां से चले जाओ। लक्ष्मण कहते भाभी मैंने आपको बताया कि डरने की और संकट की कोई बात ही नहीं है, राक्षसी था, उसने मायावी जाल से मरते समय उसकी योजना के अनुसार भैया की आवाज में पुकारा है, इसलिए आप मोहित मत होना, भ्रमित मत होना, शांत रहना, अभी कुछ देर में प्रभु रामचंद्र उसका वध करके लौटते ही होंगे। सीता देवी जो है ना उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है, वो कहते हाँ अब मैं समझ गई तुम्हारे मन में क्या है, तुम इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जब से हमारे साथ में वन में आए हो तब तक तुम इंतजार कर रहे हो कि कब प्रभु रामचंद्र नष्ट हो जाएंगे और कब तुम मेरा भोग लोगे, मैं जानती हूं, इसीलिए तुम इतना भयंकर घटना होने के बाद भी, इतनी तीव्र पुकार सुनने के बाद भी शांत खड़े हो, क्योंकि तुम इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे, मेरा भोग करना चाहते हो, मुझे पत्नी बनाना चाहते हो। आप सोच सकते हैं लक्ष्मण के हृदय पर क्या बीती होगी उस समय, जो रात भर सोते नहीं थे, अपने आप को दास मानकर प्रभु रामचंद्र की सेवा में और सीता देवी की सेवा में लगे रहते थे, उन्होंने कभी सीता जी के चरणों के ऊपर नजर भी नहीं उठाई। वो कहते हैं कि मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मेरा हर सांस, हर शक्ति, हर कण कण मेरे शरीर का जो आपकी सेवा में है, आप निश्चिंत रहे माता। लेकिन वो बहुत कठोर शब्द कहती है, तब वो कहते हैं कि आपका आदेश है, मैं जानता हूं कि आप संकट को पुकार रही हैं, मेरे प्रभु ने मुझे आदेश दिया है, भैया का आदेश है कि आपको छोड़कर न चले जाए, लेकिन आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है कि आपकी आज्ञा का पालन करूं कि भैया की आज्ञा का। लक्ष्मण चले जाओ यहां से। तो कहते ठीक है, अपनी कुटिया से आपको बाहर नहीं निकालना है, और वहां पर बाण से रक्षा एक लाइन निकालते हैं और कहते हैं कि इस रक्षा के इस रेखा के अंदर आपको रहना है। वो जो रेखा है वो आज भी पर्णकुटी के बाहर एक नदी के रूप में वहां पर उसका प्रकटकरण हो गया है, वहां प्रकट है वो सीता गुफा जो है ना उसकी थोड़ा बाजू में वो एक नदी है छोटी सी, उसके रूप में वहां पर वो जलाशय एक रेखा उत्पन्न है वहां पर। आपको किसी भी कीमत पर इस रेखा के बाहर नहीं जाना है, ऐसे बोलकर वो निकल जाते हैं। और कुछ ही देर में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु रामचंद्र जो है वो मारीच को मारकर लौटते होते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, लक्ष्मण तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने आपको आदेश दिया था कि आपको सीता को छोड़कर एक क्षण भी वहां पर हिलना नहीं है, किसी भी कीमत कर आपको सीता को छोड़कर नहीं जाना है। तो बड़े दुखी हृदय से लक्ष्मण जी सीता का जो वचन है उसके बारे में प्रभु को सुनाते हैं कि भाभी ने क्या क्या कहा मुझसे, मुझ पर इतना घिनौना आरोप लगाया है, मेरा इतना कठोर वचन से मुझे इतने हृदय को तीव्र वेदना दी है कि फिर मुझे जाना पड़ा। मैं उनको लक्ष्मण मैं रेखा तान कर वहां से आया हूं। तो वो राम जी कहते हैं कि जरूर ही जब हम लौटेंगे तो कुटिया में सीता नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम लौट जाएंगे तो हम सीता को प्राप्त नहीं करेंगे। और वो चल के आ रहे थे, भागने लगे दोनों, हवा की गति से भागने लगे। और यहां पर जैसे ही लक्ष्मण जी निकलते हैं, साधु का भेष धारण करके रावण जो है वो वहां पर प्रवेश करते हैं। और पहला वाक्य क्या उसका, हे सर्वांग सुंदरी तुम कौन हो, तुम उस वन में क्या कर रही हो, मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे आपसे भिक्षा चाहिए। तो सीता देवी तो बचपन से ही साधुओं की सेवा में थी, उनके पिता जनक ने उनको बचपन से ही साधुओं की सेवा करने की मर्यादा सिखाई थी। लेकिन उनको लगता है कि साधु बड़ा अजीब आदमी है, कोई भी साधु ऐसे सर्वांग सुंदरी ऐसे करके किसी को संबोधन नहीं करता है। लेकिन फिर भी जैसे भी हो पिता के संस्कार के अनुसार वो उनके चरण धोती है और उनको आसन देती है, उनको फूल देती है, फल देती है। तो वो उसकी भाषा बदलती नहीं है, वो कहती है इतनी सुंदर स्त्री होकर तुम जंगल में क्या कर रही हो। फिर उसके बाद में सीता जी को आश्चर्य होता है कि ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूं, मैं इतना यात्रा करके थक गया हूं कि अंदर नहीं आ सकता हूं, क्योंकि मैं आपको, वो कहते हैं आपका भोजन मैं अंदर कराऊंगी, मैं बाहर नहीं आ सकती। तो रावण जी आगे जाने का प्रयास करते हैं तो अग्नि जाल से उनको बहुत संकट होता है, मतलब समथिंग लाइक स्पार्क्स, यू नो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स कीप कमिंग आफ्टर सम डिस्टेंस। तो समझता है कि यहाँ पर बड़ा योग बल से निर्माण किया हुआ एक भयंकर चक्र यहाँ पर सुरक्षा का बनाया गया है जिसके आगे मैं खुद प्रवेश नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि मैं थक गया हूं, मुझे यहीं पर भोजन कराओ नहीं तो हम चले जाएंगे। तो फिर सीता देवी उस रेखा को पार कर भोजन लेकर रावण के पास में आती है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तुरंत रावण अपना रूप प्रकट करता है, मैं हूं दशानंद लंकापति रावण, त्रिलोक विजयी रावण। जब मैं कुछ बोलता हूं तो सारे लोगों की पुरुष और स्त्री थर्राते हैं, कांपते हैं। मैं वायु इंद्र चंद्र सोम सूर्य सबको परास्त कर चुका हूं। एको हम द्विजो नास्ति न भूतो न भविष्यति, मुझ जैसा कोई हुआ नहीं है न होगा, मैं ही हूं त्रिलोक विजयी रावण। सब जितने भी योनियां पैदा की है सबको मैं परास्त कर चुका हूं। और फिर कहता है कि मेरे लंका में हजारों रानियां हैं, मेरी पटरानी मंदोदरी है, वो सभी मिलकर आपकी सेवा करेंगी, उनके आपकी दासी बनेंगी और आप मेरी पटरानी बनोगी। इन तुच्छ मानवों के साथ में जंगल में पेड़ की खाल पहनकर घूमने के बजाय मेरे महल की रानी बनो। सब सुख जो है मैंने कुबेर को परास्त किया है, सब देवताओं का कोष मेरे पास में है, लंका मेरे सोने की बनी हुई है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे ऐश्वर्य का सब लोग क्या कहते हैं उसको, दे एनवी माई वेल्थ एंड माई पावर। तो ऐसे अतुलनीय सौंदर्य और संपत्ति और ऐश्वर्य का भोग करने के लिए आप मेरी रानी बनो। बीच में चिल्लाते हैं, बीच में कोमल बन जाते हैं, बीच में चिल्लाते हैं फिर कोमल बन जाते हैं, क्योंकि उनको किसी तरह से सीता को वश करना था। तो सीता कहती है कि जो गरुड़ में और कौवे में अंतर होता है वही अंतर मेरे प्रभु श्री राम और तुझ में है। जब ये डायलॉग सीता बोलती है तो सारा ऑडियंस ताली बजाता है जोरदार, हरि बोल, क्योंकि उस ड्रामा के अंदर हम रावण बने थे और हमारी पत्नी सीता बनी थी और सब जनता को पता था कि रावण कौन है सीता कौन है। जब सीता के मुंह से ये दिव्य वाक्य प्रकट होता है कि मेरे क्या कहते हैं उसको गरुड़ और कौवे के अंदर जो अंतर है वो मेरे प्रभु श्री राम और तुझमें है। तो सब ऑडियंस ताली बजाता है जोरदार, फिर अगला डायलॉग हम बोल नहीं पाते हैं, या आगे बोलने था कुछ लेकिन तालियां बजती रहती है। फिर तालियां बंद होने के बाद में अगला डायलॉग प्रकट होता है। तो प्रभु रामचंद्र का गुण गौरव करती है सीता देवी, वो कहते हैं कि मेरे पति को आप जानते नहीं हैं, आप एक क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज इट कॉल्ड, लांडगा मुझे कहा फॉक्स, ऐसे आप कोल्ले की तरह हो जो छुप छुप कर मुझे उठाने के लिए यहां पर आए हो। अगर आपकी हिम्मत होती, अगर आप वीर होते तो सामने आकर लड़कारते, जब मेरे पति कहीं चले गए हैं तब अकेले अबला को देखकर तुम यहां पर अपने वीरता का बखान कर रहे हो, तुम बहुत कायर क्या कहते हैं उसको, कायर हो। तो फिर भी रावण जो है अपनी काम वासना के बल से इतना प्रभावित होता है, सीता देवी को उठाता है अपने हाथ से, और उठाकर जो पुष्पक विमान उसने कुबेर से चुरा कर लाया था उस पर उसको डाल लेता है। अभी इतनी देर वो ये बात क्यों कर रहा है, सीता देवी को ऐसे मीठी मीठी बातें करके क्यों पटाने की कोशिश कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे एक कहानी है कि कुबेर का पुत्र, जो कुबेर को जब वो युद्ध करने गए थे रावण, और कुबेर को परास्त करके उसका पुष्पक विमान छीन कर वो लेके आते हैं, और पुष्पक विमान में ही उड़कर जाते थे, तो उस समय वो देखते हैं कि रंभा देवी जो है नल कुबेर की पत्नी और मेनका, रंभा रंभा देवी नदी में स्नान करती होती है, तो रंभा पर रावण पुष्पक विमान से उतर कर बलात्कार करता है। तो रंभा देवी रोती हुई अपने पति के पास जाती है, जो कुबेर के पुत्र हैं नल कुबेर, आप देख जानते हैं ना उसकी कथा, कृष्ण भगवान की कथा में भी उनके आते हैं, वो दोनों पेड़ बन जाते हैं, वो कुबेर के पुत्र हैं नल कुबेर। तो कुबेर को बड़ा, नल कुबेर को बड़ा गुस्सा आता है, वो तलवार निकाल के बाहर जाता है, देखता क्या है कि रावण के द्वारा ये बलात्कार हुआ है, जो मेरे बलशाली पिता को परास्त करके भी आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा उसके सामने। तो असहाय होकर वो एक शाप बोलता है उसके लिए कि रावण ने मेरी पत्नी पर बलात्कार किया है, इसके आगे मन की इच्छा के खिलाफ अगर रावण किसी स्त्री को संस्पर्श करेगा तो वो मर जाएगा, ऐसे वो शाप देता है उसको, कम से कम शस्त्र नहीं वचन से मैं शाप दूंगा उसको। रावण ये शाप सुनता है और वहां से आगे चला जाता है। उसके आगे वो जंगल में उतरता है दोबारा एक बार, एक सुंदर स्त्री को देखकर जो बड़ी 14 साल की उम्र में कठोर तपस्या कर रही थी पेड़ की खाल पहनकर, तो कहता है ये जंगल में क्या कर रही हो, मेरे महल की रानी बनो, तुम्हारा सौंदर्य जो है वो जंगल में तपस्या करने के लिए नहीं है, हम दोनों राजा रानी बनकर आनंद लेंगे, चलो हमारे साथ। तो कहते हैं मैं वेदवती हूं, ब्राह्मण कन्या हूं, मैं यहां पर विष्णु को वरने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। बोले विष्णु विष्णु क्या होता है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे स्वीकार कर लो, ऐसे बोल के जबरदस्ती उसको स्पर्श करता है। स्पर्श करते ही वेदवती मंत्र बोलकर अग्नि उत्पन्न करती, अपने को जलाकर भस्म कर देती और कहती है कि मैं आऊंगी और दोबारे तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। तो वही वेदवती सीता बनकर आती है, और इस शाप के वजह से कि अगर किसी स्त्री को उसके मन की इच्छा के खिलाफ अगर तुम ललकारोगे तो तुम मर जाओगे, इसलिए वो चाहता है कि वो मान जाकर मेरी पत्नी बनने को स्वीकार करें, इसलिए वो उसको बहुत सारे वाक्य सुनाता है। तो उसको उठा कर ले जाता है, और आगे जाकर जब वो उड़ता है तो सीता देवी व्याकुल हो जाती है, हे वन के देवताओं, हे जंगल के देवताओं, हे आकाश के देवताओं, मेरी रक्षा करो, ये क्रूर रावण राक्षस मुझे उठा कर ले जा रहा है। हे वेलियों, हे वृक्षों, जब हमारे प्रभु लौट कर आएंगे तो उनको बताना कि ये लंका का राजा रावण क्रूर राक्षस मुझे उठा कर ले गया है, ऐसे वो चिकारती है, पुकारती है, चिल्लाती है। रावण कहते हैं पुकारो और पुकारो, आपकी रक्षा के लिए मेरे सामने कोई नहीं आ सकता है, और जोर से हंसता है, ठाका मार के। सीता पुकारती रहती है, चिल्लाती रहती है, और कुछ देर के बाद में अपने कंगन और अपने पायल और अपने अलंकार उतार कर वो फेंक देती है। और आपको लगेगा अलंकार कहाँ से आया उनके पास, जंगल में वनवास के समय वो सती अनुसुईया को मिलती है अत्रि मुनि के आश्रम में, तब उनके पास कोई अलंकार नहीं होते, केवल पेड़ की खाल पहनकर वलकल पहनकर वो जंगल में वनवास के लिए जाते रहते हैं। लेकिन सती अनुसुईया जो सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, देवताओं के स्त्रियों में श्रेष्ठ है पतिव्रता धर्म में, वो सीता को उपदेश करती है और भेंट के रूप में अपने अलंकार सीता को दे देती है। वही अलंकार जो सती अनुसुईया ने सीता को दिए होते हैं वो सीता ने पहने होते हैं। तो जब रावण उसको उठा के ले जाते हैं तो वो कान के कुंडल, हाथ के कंगन, पैर के पायल उठाकर सब निकालकर फेंक देती है एक चिन्ह के रूप में कि जब वो लौट के आएंगे ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि मैं दक्षिण दिशा में गई हूं। तो जब रावण कहता है पुकारो चिल्लाओ अब तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आ सकता, उस समय एक आवाज गूंजती है रुक जाओ रावण रुक जाओ। तो मुड़कर देखते हैं तो एक बहुत पहाड़ जैसा सफेद रंग का गीद पक्षी जो है उसको ललकार रहा है, मैं जटायु हूं, मेरे होते हुए तुम सीता का हरण नहीं कर सकते। वो कहता है बूढ़े पक्षी जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, हमारे काम में व्यवधान मत दो। वो कहते हैं मेरे जीते जी तुम सीता का हरण नहीं कर सकते, तुम कायर हो, तुम वीर पुरुष नहीं हो, तुमने छल कपट से इस कबला को उठाया है, तुम जानते नहीं उसके पति का बल क्या है, अगर वो आपके सामने आएंगे तो आपके सारे कुल का वध कर देंगे, आपका भी सर्वनाश होगा, इसलिए सीता को छोड़ दो। तो रावण ठहाका मार के हंसता है बूढ़े पक्षी तुम मेरे सामने क्यों आते हो, तुम्हें अपना जीवन प्यारा नहीं है। उस समय जटायु की आयु 60,000 साल थी, अपने जवानी के समय पर जटायु बड़ा बलशाली था लेकिन इस समय उसकी उम्र 60,000 साल थी और रावण जो था भरी यौवन अवस्था में था पर बहुत बलशाली था। फिर भी जटायु बहुत भयंकर युद्ध करते हैं, उस युद्ध का वर्णन रामायण में दिया है। इतने बूढ़े पक्षी होने पर भी वो रावण के रथ के सारथी को मार देते हैं, सारे जो खच्चर हैं उनको मार देते हैं, रावण के जो कवच है क्या कहते हैं उसको युद्ध में क्या पहनते हैं वो चिलखत, मतलब वो कवच पहनते हैं ना युद्ध कवच, उसको तोड़ देते हैं, रावण को वो निर्वस्त्र कर देते हैं और उसकी पीठ को अनंत बार खरोच कर पूरा मांस निकाल लेते हैं और रथ के टुकड़े करके वो जमीन पर गिरा देते हैं। तो सीता के साथ रावण जमीन पर गिर जाता है, फिर सीता जमीन पर और रावण और जटायु आकाश में। उसके पहले सीता और रावण रथ में और जटायु आकाश में, ऐसे युद्ध होता है और रावण को इतना जर्जर करता है वो युद्ध से कि उसका रथ छुटकर जब गिरता है तो सीता जमीन पे, ये दोनों आकाश में युद्ध करते रहते हैं। बहुत देर युद्ध होता है और काफी देर युद्ध करने के बाद में रावण को जैसे वो परास्त करने के लिए परास्त कर लेता है ऑलमोस्ट, तब रावण ठहाका मार के हंसता है और अपना चंद्रहास खड़ग जो है वो निकालता है। वो चंद्रहास खड़ग जो है उसकी चमक को देखकर देवता भी घबराते हैं, थर्राते हैं, इंद्र आदि देवता को परास्त कर दिया उन्होंने उस खड़ग के लिए, वो खड़ग उन्होंने वरदान में प्राप्त किया था। अभी कहते हैं बहुत हो गया इस बूढ़े पक्षी का, इसको समाप्त करने का समय आ गया है। तो वो उस तलवार को निकालकर उसके दोनों पंख काट देता है और दोनों पैर भी काट देता है और जैसे ही दोनों उसके पंख कटे जाते हैं तो मानो आकाश में सफेद बादल पर जब बिजली चमकती है उस प्रकार से अनंत खून बहता है उस शरीर से और वो लथपथ होकर जैसे कि पहाड़ से ज्वालामुखी निकल रहा है लाल रंग का, ऐसा दृश्य होता है और आकाश से एक पहाड़ नीचे गिर रहा है। इस प्रकार से दृश्य नजर आते हुए जटायु जो है वो जमीन पर गिर जाते हैं और फिर जमीन पर आते हुए ठहाका मार के हंसते हुए फिर सीता को उठाकर रावण रथ में बैठता है, चला जाता है। रावण के पास कई सिद्धियां थी, उसका एक रथ तो टूट गया, फिर मन से उसने और एक रथ निर्माण किया, फिर सीता को उठाया और वो हवा की गति से लंका पहुंच गया। तो ये जो स्थान है जहां पर जटायु और रावण का युद्ध हुआ है, फिर आगे जाकर जटायु का मृत्यु हुआ है, वो है टाकेद, वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, बहुत सुंदर स्थली है वो। जटायु ने, क्योंकि सीता देवी उसको कहती रही बार बार कि हे जटायु हे तात आप युद्ध मत करना, ये बहुत बलशाली राक्षस है, आपकी बड़ी उम्र है, आप इनको परास्त नहीं कर पाएंगे, आप केवल प्रभु रामचंद्र को बताना कि मुझे ये रावण इस दिशा में उठाकर ले गया है। फिर वो कहते हैं सीता आप डरना नहीं, मेरे होते हुए आपको नहीं भगा सकता, मैं इसको परास्त करूंगा। और आपको बचाऊंगा। तो तुलना की गई शास्त्र में की गई है कि एक थे अर्जुन, उन्होंने युद्ध में सबको परास्त करके जीत कर विजय प्राप्त किए, और एक है जटायु जो भगवान की सेवा में देह छोड़ दिया उन्होंने, मतलब परास्त हो गया ना वो, रावण के सामने हार गए वो। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि अर्जुन की जीत के सामने भी जटायु का जो मरना है वो उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जानते हुए कि मैं कमजोर हूं उसके सामने, फिर भी भगवान की सेवा में जटायु ने अपने शरीर को त्याग दिया, अपने जीवन त्याग दिए, प्राण त्याग दिए भगवान की सेवा। इसलिए जटायु का समर्पण जो है हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायी है। कई बार जीवन प्रसंग आता है कि हमारे सामने हमारा शत्रु जो होता है, मतलब प्रसंग ऐसा हमारा सामने प्रकट होता है जो बहुत बलशाली होता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में हमको जटायु से प्रेरणा लेकर अपनी सेवा को नहीं छोड़ना चाहिए। भले हमारा शरीर निकल जाए, प्राण निकल जाए, फिर भी भगवान की सेवा में जीवन को अर्पण करना चाहिए। यही इस कथा का सार है। और उसके बाद में रावण जब चला जाता है तो यहाँ पर लौट के आते हैं, कुटी में देखते हैं सीता नहीं है, तो पुकारते हैं, सीते आप कहाँ हो, क्या आपने अपने जो आपको अच्छे लगते हैं ऐसे फल फूल ढूंढने के लिए आप जंगल में गई हो, कहाँ पर हो आप? तो कोई जवाब नहीं मिलता है। जहाँ जाओ फूल बिनती है, फल बिनती है, वहाँ पर जाके देखते हैं, वहाँ पर भी नहीं है। फिर बहुत व्याकुल हो जाते हैं, फिर पुकारने लगते हैं वृक्षों को, बेलियों को, हाँ आकाश के देवताओं को, वन के देवताओं को पुकारते हैं, हे वृक्षों, हे लताओं, हे पताओं, क्या आपने मेरे मृगनयनी सीता का दर्शन किया है? वो किस तरफ गई है? कौन ले गया उनको? लेकिन ऐसे कहा गया है कि वृक्ष वेली सब इतने नाराज, इतने दुखी हो गए थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कैसे बताए राम को कि क्या घटना हुई है? वो अपना शरीर त्याग देंगे। तो कपिल धारा क्षेत्र में जब वो लता पताओं को पुकारते हुए ढूंढ रहे थे राधा सीता देवी को, हे सीते, हे सीते, हे प्राण प्रिय, हे मेरी मृग नहीं सीते, आप कहाँ हो? मुझे छोड़कर आप चले गए हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसे पुकारते पुकारते जा रहे थे, उस समय आकाश से शंकर जी पार्वती को लेकर विमान से जा रहे थे। तो पार्वती जी देखती हैं कि प्रभु रामचंद्र, मेरे पति के आराध्य देव यहाँ पर रो रहे हैं। तो कहते हैं पतिदेव को, शंकर जी को कहते हैं, देखिए देखिए आपके स्वामी जी एक पत्नी को वियोग में इतना रो रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहते नहीं है, वो लीला कर रहे हैं, पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आ रहे हैं, आ गए हैं, और पत्नी के वियोग में लोगों को दिखा रहे हैं कि पत्नी से आसक्त होने पर क्या क्या दुख होता है, वो दिखाने के लीला कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं वो तो रो रहे हैं, देखो पेड़ों को पुकार रहे हैं। तो वो कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं उनकी परीक्षा करना चाहती हूँ, अगर आप वो कह रहे हैं कि मेरे आराध्य स्वामी हैं, ये मेरे पूजनीय है, भगवान हैं और लीला कर रहे हैं, तो मैं उनकी परीक्षा करूँगी। तो वो सीता का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो जाती है। वो क्या हो रहा है, पेड़ों को, लताओं को, पताओं को पुकार रहे हैं, क्या तुमने मेरी प्राण प्रिया मृगनयनी सीता को देखा है? तुरंत उनके सामने वो खड़े हो जाती हैं, हे स्वामी मैं आ गई हूँ। तुरंत प्रभु रामचंद्र उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, हे जगन माते आपको मेरा प्रणाम है। तब वो समझ जाती है कि ये कोई दुनियादारी की स्त्री के पीछे पागल नहीं हो रहे, ये स्वयं भगवान है। तब वो उनको वंदन करती है और फिर अपने पति के साथ में चली जाती है। ये जो लीला है ये उसी स्थान पर हुई है जिस स्थान पर भगवान कपिल देव ने अपनी माता को सांख्य योग सुनाया था, इसका नाम है कपिल धारा, उसी स्थान पर यह भी लीला हुई है। तो आगे जाकर वो देखते हैं कि कुछ अलंकार गिरे हुए हैं, तो राम कहते हैं लक्ष्मण देखो ये सीता के अलंकार हैं, ये देखो ये कंगन है, ये देखो ये कुंडल है, ये देखो ये पायल है, क्या आपको आप इसको पहचानते हो? लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने मेरी नजर को कभी भी सीता जी के चरणों के ऊपर नहीं उठाया है, इसलिए मैं केवल पायल को पहचान सकता हूँ, कुंडल और कंगन को नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने पांव के ऊपर, चरणों के ऊपर कभी माता को देखा ही नहीं है। कितना श्रद्धा और कितनी भक्ति है उनकी, कितना श्रेष्ठ चरित्र है लक्ष्मण जी का, हम इतना श्रेष्ठ वीर और राजपुत्र होने के बाद भी एक संन्यास वृत्ति लेकर अपनी पत्नी को भी छोड़कर वो जंगल में चले गए केवल इन दोनों की सेवा करने के लिए। वो सेवा का भाव क्या है? कभी भी सीता जी को चरणों के ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा उन्होंने, तो फिर वो पहचानते हैं कि हाँ यही मेरी पत्नी का अलंकार है। फिर आगे की कथा आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ रथ के पहिए टूटे हुए हैं, कुछ गधे मरे हुए हैं, हाँ कुछ अस्त्र गिरे हुए हैं और एक बड़ा विशाल सा पक्षी वहां पर गिरा हुआ है। तो सोचते हैं कि इसी जंगली पक्षी ने मेरी सीता को मारकर खाया होगा, अभी मैं इसका वध कर देता हूं। प्रभु रामचंद्र को दुख भी हो रहा है पति के पत्नी के वियोग में, और देखते हैं कि मेरे पत्नी का वध किया हुआ जानवर मेरे सामने है, तो तुरंत उसको धनुष लेकर मारने की तैयारी में आगे बढ़ते हैं। तो वो सुनते हैं राम 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 ऐसी पुकार सुनते हैं, तुरंत उठाया धनुष जो है नीचे करते हैं और भाग के जाते हैं उनके पास। तो मरणासन्न अवस्था में जटायु वहां पड़े रहते हैं, उनके शरीर से मानो हर एक खून की बूंद जो है वो बह चुकी होती है। ये सिंपली मेंटेनिंग इज लाइफ टू गिव द मैसेज टू राम कि सीता जी कहाँ चली गई है, नहीं तो वो कब के मर चुके होते, इतना भयंकर आघात उन पर हो गया होता है। लेकिन रामचंद्र जी आएंगे, लक्ष्मण जी आएंगे, तो मैं उनको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ और उसके बाद मैं मर जाऊंगा, इसी विचार से अपने प्राणों को अपने शरीर में रखकर वो जीवित रहे थे। तो तुरंत भाग कर रामचंद्र जी वहां जाते हैं, उसको गोद पे लेते हैं, तात आप जटायु हो, मेरे पिता समान हो, मेरे पिता के मित्र हो, ये कैसी आपकी अवस्था हुई? तो बड़े टूटे फूटे आवाज में, हाँ प्राण त्यागने वाले अवस्था में वो संक्षेप में प्रभु रामचंद्र को बताते हैं क्या क्या हुआ। वो बताते हैं कि आपको दक्षिण दिशा में जाना है, लंकापति रावण आपके पत्नी को लेके उठा के गया है और उसी के गोद में जटायु भगवान राम के गोद में ही अपना प्राण त्याग देते हैं। कितना बड़ा भाग्य है उनका देखो आप। इसलिए कहा गया है कि हमें ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, अरे हम तो ब्राह्मण नहीं है, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, हम तो अमीर भी नहीं है, हम क्या भक्ति करेंगे, अरे ये तो मानव भी नहीं है, ये तो गीदड़ है, गीदड़ की योनि में उत्पन्न हुआ है। फिर भी भगवान की भक्ति के लिए कोई भी भौतिक कंडीशन बाधा नहीं बन सकती। नथिंग मटीरियल कैन ऑब्स्ट्रक्ट द पाथवे ऑफ सर्विस टू गॉड। इच्छा होनी चाहिए, खाली इच्छा। तो गीदड़ की योनि में होते हुए भी प्रभु की सेवा जटायु इतनी श्रेष्ठ तरीके से करते हैं और भगवान के गोद में प्राण त्याग देते हैं। शास्त्र में लिखा है कि दशरथ से भी अधिक भाग्यवान थे वो, क्योंकि दशरथ जी प्रभु रामचंद्र के वियोग में उनसे दूर रहते हुए शरीर त्याग दिया उन्होंने। फिर भगवान ने उनका श्राद्ध तो किया है, लेकिन जटायु की मृत्यु भगवान के गोद में हुई है। लक्ष्मण को कहते हैं भगवान, लक्ष्मण इसकी अंत यात्रा की तैयारी करो और वहीं पर अपने हाथ से एक पुत्र के समान जटायु को अंत्य अग्नि देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जटायु तुम मेरे लोक में प्रवेश करोगे। तो सबके आंखों के सामने जटायु की आत्मा जो है वो भगवान के धाम में प्रवेश करती है। ये जटायु का वीर गति है, यानी कि परास्त होकर भी वो विजयी हो जाते हैं और जो भाग्य दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ था वो जटायु को प्राप्त हुआ। तो ऐसा ही सुंदर स्थान है जहाँ पर भगवान ने बहुत सुंदर लीला की है, और इसी जगह पर आप अभी आगे जाकर दर्शन करोगे तो वहाँ पर त्रिदेव कुंड है, बीच में अग्नि तीर्थ है और वहीं पर सीता देवी को अग्नि को सुपुर्द किया गया था, उसके आगे कपिला देवी का संगम है। ये सारी जगह जो आप देख रहे हैं पता नहीं इससे कितनी हजारों गुना सुंदर हो जगह होगी, अभी भी जगह सुंदर है, इतनी शांत है, पूरी तपस्या का भजन का वातावरण यहाँ पर है। ये भजन की स्थली है, यहाँ पर प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों ने यहाँ पर तपस्या किया है वनवास में रहते हुए। तो आप सब लोग इसका आनंद लीजिए, नदी का आचमन कीजिए, इस ब्रिज से आगे जाकर वहाँ संगम का दर्शन कीजिए, फिर पीछे आकर उस जो आदमी वहाँ बैठे उसके नीचे जाकर त्रिदेव कुंड का दर्शन कीजिए, वहाँ पर आचमन कीजिए, प्रणाम कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें हमेशा गुरु के आदेश में रहने का शक्ति दो। सीता देवी की समस्या क्या थी? लक्ष्मण जी गुरु समान हैं, लक्ष्मण जी आदि गुरु हैं, बलराम जी भगवान के कृष्ण के प्रथम अवतार हैं, लीला अवतार, और वो आदि गुरु भी हैं। हमारे सारे जो जितने भी गुरु हैं इस दुनिया में गुरु शिष्य परंपरा में, वो सारे शिष्य गुरु जितने भी हैं वो बलराम जी से यानी कि लक्ष्मण से अपनी शक्ति को प्राप्त करती है। तो गुरु जी का आदेश था सीता जी को इस रेखा के आगे जाना नहीं है। जब उन्होंने उसको तोड़ा तब वो गुरु के सुरक्षा कवच से बाहर चली गई। हमारा सुरक्षा कवच क्या है? गुरु की आज्ञा पालन करना। हर एक मनुष्य को ये जरूरी है कि वो गुरु को स्वीकार करें। अगर हम मनुष्य होकर, स्त्री या पुरुष हो, कुछ भी हो, मनुष्य होकर अगर हम गुरु स्वीकार नहीं करते हैं तो माता पिता होकर भी हम अनाथ हैं। हर एक मनुष्य को द्विज होना चाहिए, उसका गुरु के द्वारा दोबारा जन्म होना चाहिए। जब भी कोई मनुष्य जीव जन्म लेता है तो उसके लिए गुरु भी प्रकट हो जाते हैं, भगवान उनके लिए गुरु की व्यवस्था करते हैं जिसकी कृपा से वो उन तक पहुंच सकते हैं। और गुरु जी का जो आज्ञा है वो हर जीव के लिए एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा किससे? माया के प्रवाह सुरक्षा होती है। और गुरु जी के आदेश पालन करने से उस व्यक्ति के हृदय में भगवान निवास करते हैं और माया से उस जीव को बचाते हैं। सीता देवी ने लक्ष्मण जी का आदेश का उल्लंघन किया, इसलिए माया के प्रभाव में वो आ गई, उसका हरण हो गया। सीता देवी भक्ति का प्रतीक है, शी इज द एम्ब्लेम ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति का वो क्या कहते हैं उसको, प्रतिनिधि है। जब हमारी शुद्ध भक्ति गुरु जी के आदेश में हम करते हैं तो वो सुरक्षित रहती है। जब गुरु जी का आदेश भंग होता है तो हमारी भक्ति रावण द्वारा छीनी जाती है। इट इज बीन कैप्चर्ड बाय माया इन द फॉर्म ऑफ रावण। और हमारे सबके हृदय में रावण भी विराजमान है, हाँ ये ध्यान रखना। जब तक हम गुरु की आज्ञा में हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए ये रावण जो है उससे हम सुरक्षित रहते हैं। और जब हम गुरु जी का आदेश नहीं पालन करते हैं तो ये रावण हमारा हरण कर लेता है, हमारी भक्ति को छीन लेता है, हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। सीता देवी को, अगर सीता देवी लक्ष्मण जी का आदेश मानती, उनका कहना मानती कि ये मारीच है, इसका राम ने वध कर दिया है, उसने छल कपट से मायावी आवाज से राम के आवाज में आपको पुकारा है, आप डरना नहीं, आप निश्चिंत रहना, अगर वो सुन लेती विश्वास के साथ में तो वो सुरक्षित रहती वहां पर। लेकिन उन्होंने उसमें अविश्वास दिखाया, न केवल गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, गुरु अपराध भी किया। इसलिए आगे के एक साल में, पूरे साल भर सीता जी की इतनी भयंकर अवस्था हुई, उसको अशोक वाटिका में रखा गया। रोज राक्षस उसको चीखते थे, चिल्लाते थे, डराते थे, धमकाते थे, मार काट कर खाने की धमकी देते थे, उसको भोजन भी मीठा लगने नहीं आता। एक साल तक सीता देवी उपवास करती रही, कृष्ण हो गई, लेकिन केवल पति के ऊपर जो श्रद्धा थी उस पर ही वो जीवित रही। उसको विश्वास था कि हमारे पति आएंगे, हमको बचाएंगे, नहीं तो उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट सहन किया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि लक्ष्मण जी का उन्होंने अपराध किया था। तो हमें सीखना यही है कि हमें श्री गुरु जी की शरण प्राप्त करनी चाहिए, किसी भी कीमत पर मनुष्य जीवन में गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जब ये पालन करेंगे तो उसी आज्ञा पालन के अंतर हमारा वैकुंठ का निवास निश्चित हो जाता है। आवर रेजिडेंस इन गोलोक वृंदावन इन द सुप्रीम वैकुंठ बिकम्स गारंटीड व्हेन वी ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्री गुरुदेव। तो लक्ष्मण जी महाराज यही बताने के लिए यहाँ पर विराजमान है। और हम सब लोगों को यहाँ प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण जी हमें ये बल दें कि हम गुरु की आज्ञा के सुरक्षा कवच में रहे, हमारे जीवन का जो कोमल भक्ति लता बीज है उसको बचाए रखें, उसकी वृद्धि करें, उसके भक्ति लता वृक्ष के रूप में उसका रूपांतर करें, और अंतिम क्षण में गुरु जी की आज्ञा पालन के सुरक्षा कवच में उनकी कृपा से हम भगवान की प्राप्ति करें और उस जीवन के अंत में भगवत धाम भी प्राप्त करें। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र लक्ष्मण सीता भगवान की, यथाई गौर प्रेमानंदे।